नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। खैरथल तिजारा जिले की एक फैक्ट्री में आज आग लगने से 8 श्रमिकों की मौत। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कृषि, मौसम पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में एआई अपार अवसर प्रदान कर रहा है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कंपनियों और बैंकों की अनियमितताओं की जांच एसओजी से करवाएगी। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। खैरथल तिजारा जिले के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में आज आग लगने से 8 श्रमिकों की मौत हो गई। जिला प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित कई राजनेताओं ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि जिस गत्ता फैक्ट्री में ये हादसा हुआ, वहां गैर कानूनी रूप से पटाखों का निर्माण किया जा रहा था।
जो मुझे जानकारी जिला प्रशासन ने दी है, जिन मृतकों की आपने बात करी है, श्रमिकों की, क्योंकि उनके केवल अस्थियां ही प्राप्त हुई हैं, उसमें परिवारजन से बात हुई है, डीएनए टेस्ट के माध्यम से उनकी पहचान होगी। और चूंकि बताया गया कि बिहार के ज्यादातर श्रमिक गण हैं और मोतिहारी जो हमारे कलेक्टर हैं, हमारे कलेक्टर साहब और मोतिहारी कलेक्टर साहब से लगातार सतत संपर्क में भी है, और आने वाले समय में जो 7 श्रमिक जिनके अस्थि हमको प्राप्त हुई है, डीएनए के माध्यम से जांच करके उनकी पहचान की जाएगी।
श्री शर्मा ने घोषणा की कि प्रशासन पूरे औद्योगिक क्षेत्र की सघन जांच करेगा ताकि सभी अवैध इकाइयों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
राज्य सरकार के द्वारा जिला अधिकारी, विशेष रूप से रिको और पॉल्यूशन बोर्ड जो भी अधिकारी हैं, उन सबको निर्देशित किया गया, एक ज्वाइंट टीम बनाई गई है और पूरे भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में, खुशखेड़ा क्षेत्र में जो भी औद्योगिक इकाई चल रही है, उनका सघन परीक्षण किया जाएगा। जो जिस औद्योगिक इकाई जिस चीज के लिए उसने अपना जो भी सर्टिफिकेट ले रखा है, जिसको चलाने के लिए, यदि वो उसके विपरीत चलाई गई तो उन उद्योगों को बंद भी किया जाएगा और वो अभियान अभी से ही शुरू हो चुका है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की तेजी से बढ़ती रचनात्मक अर्थव्यवस्था देश के मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे और कुशल लोगों से संचालित हो रही है। आज से नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के उपग्रह कार्यक्रम के सत्र के दौरान श्री वैष्णव ने विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि देश में लगभग 90% हिस्से में 5G का कवरेज है, जिससे नागरिक डिजिटल रूप से कुशल हो गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक प्रभावों के बारे में उन्होंने कहा कि कृषि, मौसम पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन, नई सामग्रियों की खोज और उत्पादकता जैसे क्षेत्रों में एआई अपार अवसर प्रदान कर रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत एक संतुलित और जिम्मेदार एआई भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है। गौरतलब है कि नई दिल्ली में आज से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देशों के मंडप बनाए गए हैं। प्रदर्शनी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण करवाया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल गुजरात के गांधीनगर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर चर्चा होगी। बैठक का मुख्य फोकस 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, डेयरी और मत्स्य समितियों की स्थापना तथा योजना विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के विस्तार पर रहेगा। इसके अलावा सहकारिता कानूनों में सुधार, डिजिटलीकरण और सहकारी बैंकों को मजबूत करने जैसे विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि शिक्षा में तकनीक और भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आज जयपुर में अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जाए। उन्होंने बताया कि सरकार ने अब तक 1,00,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी हैं। 1,54,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। श्री शर्मा ने बताया कि सरकार के कार्यकाल में 351 परीक्षाएं हुई हैं और इनमें एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है।
2,00,000 से अधिक युवाओं को हमने निजी क्षेत्र में नौकरी देने का काम किया है। करीब 3,50,000 छात्रों को कौशल प्रशिक्षण का लाभान्वित भी किया है। 2,00,000 से अधिक युवाओं को इंटर्नशिप करवाया गया है। 65 आई स्टार्टअप लॉन्च पैड नेस्ट स्थापित किया गया है। प्रदेश में 17 नवीन खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं। 71 नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। 185 नए राजकीय महाविद्यालयों के लिए भवन का निर्माण भी किया है और कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी देवनारायण स्कूटी योजना के तहत छात्राओं को करीब 40,000 स्कूटियां वितरण करने का काम भी हमने किया है।
समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सरकार शिक्षा में कौशल विकास पर जोर दे रही है। 2 दिन के इस समागम में देशभर के शिक्षक और शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में बीकानेर और जोधपुर संभाग के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बजट 2026-2027 की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। संवाद के दौरान सरकारी योजनाओं को लेकर जिलेवार सुझाव भी लिए गए। बैठक में केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने आज विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कंपनियों और बैंकों की अनियमितताओं की जांच एसओजी से करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कई जिलों में फर्जी दस्तावेज और जाली हस्ताक्षरों के माध्यम से बीमा क्लेम में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं।
ये जो माफिया है ये कंपनी के लोग भी हैं, कुछ आम जन से भी हैं जो इस धंधे में लगे हुए, और ये नागौर बीकानेर चूरू का कुछ हिस्सा, कुछ साचौर जालौर के हिस्से में ऐसी कार्रवाई ज्यादा चल रही है। हमने एक FIR दर्ज कराई है सालासर वाले मामले में और वहाँ के तहसीलदार गजनेर का है, उनसे भी हमने पत्र प्राप्त कर लिया जिसमें तहसीलदार ने लिखा है कि इस नाम का कोई किसान न इस नाम का रकबा किसी किसान के पास है। माफियाओं ने बैंक अधिकारियों से मिलकर AIC कंपनी के लोगों ने ये गड़बड़ घोटाला किया और इसमें हमने दोनों प्रकरणों में FIR दर्ज करा दिए।
श्री मीणा ने बताया कि श्रीगंगानगर के करणपुर में सर्वेयर द्वारा स्वयं हस्ताक्षर करने और फसल खराबा शून्य दिखाने से किसानों को 128 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मंत्री ने बताया कि सरकार ने अब तक 6,328 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम भुगतान किया है। उदयपुर से डूंगरपुर होते हुए अहमदाबाद के असारवा के बीच आज पहली वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर असारवा के लिए रवाना किया। डूंगरपुर स्टेशन पर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने ट्रेन का स्वागत किया। इस दौरान लोको पायलट का भी अभिनंदन किया गया। ये नई रेल सेवा राजस्थान और गुजरात के बीच बेहतर संपर्क सुनिश्चित करेगी। इस ट्रेन के माध्यम से यात्रा का समय कम होगा और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिल पाएंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। बोर्ड ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर परीक्षार्थियों को सुबह 10 बजे तक केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से आयोजित की जाएगी। इस साल 46,00,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बोर्ड ने इस साल से 10वीं की परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित करने का निर्णय लिया है। 10वीं कक्षा की दूसरी परीक्षा 15 मई से 1 जून तक आयोजित होने की संभावना है। प्रदेश में कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से मौसम में बदलाव के आसार हैं। जयपुर और बीकानेर संभाग में कई इलाकों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर थम गया है। अधिकतर स्थानों पर सुबह शाम ही मामूली सर्दी का असर है।
एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में आगामी 24 घंटों में सक्रिय होने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से 17 फरवरी को रात्रि के समय से ही राज्य के कुछ भागों में, विशेषकर जोधपुर, अजमेर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग और इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के भी कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि इस सिस्टम का सर्वाधिक असर 18 फरवरी को दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के कई भागों में मेघ गर्जन और आकाश की बिजली के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 19 तारीख से इस सिस्टम का असर इस बार फिर से समाप्त होता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर के अगले 2-3 दिन जो है वो इस पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव राज्य में दर्ज होगा।
पाली के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों की आय बढ़ाने और पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण वाटिका मॉडल विकसित किया गया है। किसान अपने खेत के करीब 350 वर्ग मीटर के हिस्से में इस वाटिका को लगाकर पूरे साल ताजी, रसायन मुक्त और जैविक सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। इस मॉडल में सब्जियों के साथ फल और औषधीय पौधे भी शामिल किए गए हैं। वाटिका के लिए आवश्यक जैविक खाद भी उसी स्थान पर घर की सामग्री और गोबर के उपयोग से तैयार की जा सकती है। वर्तमान में जिले के किसानों को इस तकनीक का प्रदर्शन कर प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वे स्वस्थ रहने के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खैरथल तिजारा जिले की एक फैक्ट्री में आज आग लगने से 8 श्रमिकों की मौत। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कृषि, मौसम पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में एआई अपार अवसर प्रदान कर रहा है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कंपनियों और बैंकों की अनियमितताओं की जांच एसओजी से करवाएगी। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।